پیش خدمت ہے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی, پیشکش یاسمین جمیل.
السلام علیکم, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر دم رواں ہے زندگی کے ساتھ یاسمین جمیل حاضر ہے. اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہی ہیں پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر تیان من. ہمارا یہ پروگرام ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر پاکستان اور بھارت کے لیے, جبکہ دنیا بھر میں ہمارے سننے والوں کے لیے انٹرنیٹ پر براہ راست نشر ہو رہا ہے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر, جہاں آپ اس کی ریکارڈنگ پروگرام کے بعد کسی بھی وقت سن بھی سکیں گے, شیئر بھی کر سکیں گے اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکیں گے. جبکہ اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیجز پر بھی سنا جا سکتا ہے جہاں آپ کو اس کا براڈ کاسٹ لنک دستیاب ہے. جبکہ اس کی ریکارڈنگ پروگرام کے بعد مستقل طور پر ہر دم رواں ہے زندگی کے فیس بک پیجز پر پوسٹ کر دی جائے گی, جسے آپ کسی بھی وقت سن بھی سکیں گے, شیئر بھی کر سکیں گے اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکیں گے. ہمارے لنکس ہیں facebook.com/hardamrawahaizindagi اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/yasminjameelvoaurdu. پروگرام کے دوران ہمارے مہمانوں سے سوال پوچھنے کے لیے مفت کال کا ہمارا نمبر ہوتا ہے 0800-777-89. تو لیجیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں. اپنے برے صغیر کی فوک داستانوں میں سے شیریں کے لیے دودھ کی نہر کھودنے والے فرحات کی داستان تو سنی ہوگی, لیکن آج ہم آپ کو سنائیں گے کہانی انسانیت کی محبت سے سرشار ان پاکستانی اور پاکستانی امریکی فرحادوں کی, جن کی انسانیت سے سچی محبت اداروں کی شکل میں ڈھل چکی ہے. یہ پاکستانی اور پاکستانی امریکی فرحادی قسم کے ادارے پاکستان کے صحرائی علاقے کی غریب اور پانی کی تلاش میں روزانہ میلوں پیدل سفر کرنے والی ان سینکڑوں دیہی خواتین اور ان کے گھرانوں کے لیے ان کے گھروں کے قریب پینے کے پانی کے لیے کنوؤں, ہینڈ واٹر پمپس اور واٹر پلانٹس اور واٹر فلٹر پلانٹس نصب کروا کر ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا خواب پورا کرنے کو اپنا مشن بنا رہے ہیں. ان کے اس مشن کا آغاز کب ہوا تھا اور یہ مشن اس وقت کس مرحلے پر ہے اور اسے آگے کتنی دور جانا ہے, اس کا جائزہ لیں گے اب سے کچھ دیر بعد. لیکن اس وقت تعارف ان اداروں کی نمائندگی کرنے والے آج کے مہمانوں کا پانی کی فراہمی کے ان کے تازہ ترین پروجیکٹ کے حوالے سے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی میں ہمارے آج کے مہمان ہیں کراچی شہر کے علاقے نارتھ ناظم آباد کے شہریوں کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے حال ہی میں واٹر پمپ اور واٹر فلٹر پلانٹ لگانے والے امریکہ اور پاکستان میں قائم دو ادارے, ہیوسٹن کراچی سسٹر سٹی ایسوسی ایشن اور ہیلپنگ ہینڈ فار ریلیف اینڈ ڈیولپمنٹ, ان اداروں کی نمائندگی کر رہے ہیں ہیوسٹن کراچی سسٹر سٹی ایسوسی ایشن کے صدر محمد سعید شیخ, جو پاکستان چیمبر آف کامرس یو ایس اے کے صدر بھی رہ چکے ہیں. ہمارے مہمان ہیں ہیلپنگ ہینڈ فار ریلیف اینڈ ڈیولپمنٹ یو ایس اے کے ڈائریکٹر پروگرام الیاس حسن چودھری. ہمارے مہمان ہیں کراچی ہیوسٹن سسٹر سٹی ایسوسی ایشن کے پیٹرن ان چیف مجید عزیز, جو پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر بھی رہ چکے ہیں. اور ہمارے مہمان ہیں ہیلپنگ ہینڈ فار ریلیف اینڈ ڈیولپمنٹ پاکستان کے کنٹری ڈائریکٹر فضل الرحمان. ہمارے مہمانوں کے تصویری تعارف اور اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیجز پر سننے کے لیے ہمارے لنکس ہیں facebook.com/hardamrawahaizindagi اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/yasminjameelvoaurdu. اور لیجئے اب ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے مہمان سعید شیخ اور الیاس چودھری موجود ہیں ہیوسٹن ٹیکساس سے ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ, اور مجید عزیز جو کراچی چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے, اور فضل الرحمان موجود ہیں ٹیلی فون پر اسلام آباد سے ہمارے ساتھ. تو السلام علیکم سعید شیخ صاحب.
साहबा, बहुत शुक्रिया ये अपॉर्चुनिटी देने का हमारी ऑर्गेनाइजेशन को।
और अस्सलाम वालेकुम इलियास चौधरी साहब। इलियास चौधरी साहब,
आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया।
और आप दोनों का भी, आप दोनों को बहुत शुक्रिया। और मजीद अजीज साहब, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम,
बेहद शुक्रिया। हमने थोड़ी सी तस्हीह करनी है, हमने आपको पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स कह दिया, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आप प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और
मेरा प्रमोशन आपने कर दिया,
बेहद शुक्रिया। और फजल रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। बेहद शुक्रिया आप सबका, चारों मेहमानों का, हमारे प्रोग्राम हरदम रवा जिंदगी के सुनने वालों के लिए अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकालने का। और इससे पहले कि हम बात करें कराची के इलाके में, गुज़िश्ता माह सईद शेख साहब, आपके इदारे के फंड से इंस्टॉल किए जाने वाले वाटर पंप और वाटर फिल्टर प्लांट की कुछ बताइए हमारे सुनने वालों को, ह्यूस्टन कराची सिस्टर सिटी एसोसिएशन के बारे में कि ये इदारा कब कायम हुआ और ये सिस्टर सिटी एसोसिएशन का कॉन्सेप्ट है क्या?
देखिए, ये कॉन्सेप्ट अमेरिका के प्रेसिडेंट एजनहावर ने डिकेड्स बिफोर एस्टेब्लिश किया था। और उसके बाद इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एक म्यूनसिपैलिटी को दूसरी म्यूनसिपैलिटी के साथ लिंक किया जाए और वो सिस्टर सिटी कॉन्सेप्ट के अंदर ये मतलब सारा कुछ होता है। और अब तक इसकी जितनी भी कोऑर्डिनेशन है वो इस तरह से चली कि हमारे अब तक जितने यूएस प्रेसिडेंट फ्रॉम एजनहावर आ चुके हैं वो इसके ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनेशनल लेवल पर ऑनरी चेयर होते हैं और लोकली मेयर इसके साथ हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए शहर ह्यूस्टन में अब तक 18 सिस्टर सिटीज हैं और अमेरिका के कई सिटीज हैं जिनका लिंक है एज अ सिस्टर सिटी दुनिया के मुख्तलिफ शहरों के साथ। तो 2009 में कराची को ये एजाज हुआ कि मेयर मुस्तफा कमाल पे टू विजिट टू ह्यूस्टन और यहाँ पे आकर,
जो उस जमाने में मेयर थे,
ये मेयर थे कराची
जी
के
जी।
तो यहाँ आकर हमने इस ऑर्गेनाइजेशन के काफी कुछ इसके मतलब कह लीजिए कि पेपर वर्क और वो है रिक्वायरमेंट्स, उनको पूरा करने के बाद कोई एक साल बाद ये सिस्टर सिटी सिटी गवर्नमेंट ने यहाँ पे अप्रूव किया और ह्यूस्टन फॉर्मली 2009 में कराची के साथ एक सिस्टर सिटी के तौर पे एज अ 17th और 100 मुस्लिम सिस्टर सिटी उसका रैंक आता था। तो वहां से ये ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हम मिशन जो ऑर्गेनाइजेशन का ये है कि वो हम प्रमोट करते हैं पीस थ्रू म्यूचुअल रिस्पेक्ट अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन बिटवीन वन इंडिविजुअल वन कम्युनिटी एट अ टाइम। और इसके साथ साथ इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो है टू इंक्रीज कल्चरल एंड एजुकेशनल एक्सचेंज, प्रमोट एंड इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरेक्शन बिटवीन द पीपल ऑफ ह्यूस्टन एंड कराची। तो इसी तरह से हमारे कई कल्चरल एक्सचेंजेस है, पाकिस्तान के कल्चर को यहाँ प्रमोट करना है और उसी तरह की जितनी भी एक्टिविटीज है एजुकेशन, ट्रेड और हेल्थ केयर, उन एरियाज के अंदर हम काम करते हैं।
अच्छा, तो इस दूसरे एरियाज की बात तो हम बाद में करेंगे अगर वक्त हुआ, लेकिन इस वक्त हम बात करेंगे पीने के पानी के उस प्लांट की जिसे गुज़िश्ता माह नॉर्थ नाजमाबाद में कायम किया गया जिसके लिए ह्यूस्टन कराची सिस्टर सिटी एसोसिएशन ने फंड्स फराहम किए और जो बुनियादी तौर पर हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट के पाकिस्तान भर में पानी की फराहमी और पानी की फिल्ट्रेशन से मुतालिक जारी बहुत से प्रोजेक्ट्स में से एक था और उसी ने इस प्रोजेक्ट को अमली शक्ल दी। तो आप ये बताइए कि इस प्लांट के लिए फंड्स की फराहमी का ख्याल आपको कैसे आया?
देखिए, ये एक एरिया जिसको मैंने आपके सेकंड क्वेश्चन के लिए रखा था वो है ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट। तो ह्यूस्टन कराची सिस्टर सिटी को ये एजाज है कि गुज़िश्ता 2011 में जब सिंध में बहुत ज्यादा फ्लडिंग हुई, जो कि रिकॉर्ड फ्लडिंग थी, तो हमने एक इनिशिएटिव लिया और यहाँ की 42 प्लस एंड मीडिया आउटलेट्स के साथ मिलकर एक अलायंस हमने फॉर्म किया जिसका नाम था अलायंस ऑफ फ्लड रिलीफ एफर्ट। उसी हवाले से हमारी कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हुई विद हेल्पिंग हैंड यूएसए से और हमारी अलायंस ने मुत्तफिका तौर पे हेल्पिंग हैंड के साथ एक नहीं वो हाफ अ डजन ऐसी एक्टिविटीज की है जिसके लिए हमने डायरेक्ट फंड रेज किए हेल्पिंग हैंड यूएसए के लिए, क्योंकि ये 4-स्टार रेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी क्रेडिबिलिटी हमारे अमेरिका में बहुत हाई है, दुनिया भर में है। तो जो भी मेन जो चीज थी उसमें थी हमारा स्टार्ट एज फ्लड रिलीफ एफर्ट जिसमें हमें इंटरनेशनल सिस्टर सिटीज से बेस्ट ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट का अवार्ड भी मिला 2009 में उनकी वर्ल्ड कांग्रेस में। तो साथ साथ हमने जब इस चीज को लेके चले तो जो उनके टाइटल है जो हमने उनके साथ किए हैं, हमने उसके बाद ओक्लाहोमा टर्नेडो, टर्की में जब अर्थक्वेक आया, बलूचिस्तान में अर्थक्वेक आया, फ्लडिंग जब स्कूल में हुई पंजाब के, तो हमने बहुत सारे अवेयरनेस अंडर अलायंस जो कोऑर्डिनेटेड थे बाय द ईस्टर्न कराची सिस्टर सिटी एसोसिएशन के, हमने अवेंट्स ऑर्गेनाइज किए और उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंड रेज किया। लेकिन बात आती है जहाँ पे पानी की, तो वहाँ थर्म में आपने सुना होगा या आप सब ने देखा कि एक बहुत ही बड़ी मुसीबत वहाँ पे आई थी। तो हमने
2015 में
वो कराची में था, उससे पहले थर्म में जब ये सिलसिला हुआ तो हाँ, तो वहाँ के लिए हमने एक फंड रेजिंग इवेंट किया स्पेशली फॉर हेल्पिंग हैंड यूएसए, और उसमें हमने मोर देन 100,000 रेज किए फ्रॉम ह्यूस्टन। और उसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि वहाँ पे जितने भी फंडर, जितने लोग फंड दिए थे, उनके नाम से वाटर पंप्स लगे, और ह्यूस्टन कराची के जो वाटर पंप लगे उसमें आज उस पानी के वहाँ पे फरहमी से न सिर्फ सब्जियाँ और फल उग रहे हैं, बल्कि वहाँ के लोगों के लिए एक आइंदा जो कभी इस तरह से नहीं हो पा रहा था, वो सिलसिला जारी हुआ। लेकिन उसके फौरन बाद ही 2015 में जब कराची में एक बहुत बड़ी हीट वेव आई, तो हेल्पिंग हैंड यूएसए ने एक इनिशिएटिव लिया, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने अब फौरी तौर पे उनके साथ फुल कोऑर्डिनेशन के साथ उस इवेंट में हिस्सा लिया, और अपने डोनर्स, अपने जो बोर्ड के अराकीन हैं और जितने भी लोग हैं उनको मोटिवेट किया, और इस कोऑर्डिनेशन के साथ हमने जो फंड रेज किए वो फंड कराची में हेल्पिंग हैंड ने एक एक बहुत ही अच्छा किस्म का कम्युनिटी सर्विस का जो ये एक प्रोजेक्ट है वो हमने इंस्टॉल किया, जिसका
आप जिक्र कर रहे हैं। और अब इसी प्लांट के बारे में बात करेंगे हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट यूएसए के प्रोग्राम डायरेक्टर इलियास चौधरी साहब को, जो ह्यूस्टन टेक्सास से ही हमारे साथ हैं टेलीफोन पर। तो फिर बताइए इलियास चौधरी साहब कि कैसे फिर आपको, आपने फंड रेज किए और किस तरह ये प्रोजेक्ट इतनी जल्दी कायम भी हो गया कि 6 महीने के अंदर अंदर कराची में आप लोगों ने हेल्पिंग हैंड के तावन से इसको कायम कर लिया, तो क्या इतना थोड़ा अर्सा लगता है इतने बड़े फिल्टर प्लांट को लगने में?
जी इस सिलसिले में हमने जो पिछले साल रमजान के महीने में हम लोगों ने स्पेशल फंड रेजिंग एक्टिविटीज की ह्यूस्टन में और बाकी शहरों में भी की हमने यूएसए के, तो इसमें जिस तरह अभी सही साहब ने बताया कि जो ह्यूस्टन के इवेंट थे उसमें ह्यूस्टन कराची सिटी एसोसिएशन जो है इन्होंने हमारे साथ कोऑर्डिनेट किया, अपने जो इनके दोस्त हैं अहबाब हैं इनके जो बोर्ड के मेंबर्स हैं सब तमाम लोगों को इंकरेज किया कि वो फंड जमा करें। तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इसमें तकरीबन 6 महीने से लेकर 9 माह लग जाते हैं प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। तो शुरू में तो एक डेढ़ महीना में जो इमीडिएट रिलीफ एक्टिविटीज थी उसमें हिस्सा लिया, वहां पे बहुत सी जगहों पे हमने कूल कॉर्नर के नाम से बहुत सी जगह पे हमने बर्फ प्रोवाइड की, शरबत लोगों को देते थे, इस तरह के ड्रिंक्स देते थे ताकि वो डिहाइड्रेशन का शिकार थे लोग। तो फिर हमने ये सोचा कि एक लॉन्ग टर्म कुछ ऐसी एक्टिविटी की जाए जो कि फिर आगे चल के एक नमूना बन सके, एक मॉडल बन सके, जिसको देख के दूसरी एनजीओ, फिर हमारी जो गवर्नमेंट है वहां पे उसे इधारे में वो भी ऐसे काम कर सकें। तो पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे जो बड़े शहर हैं खासतौर पर कराची, वहाँ पे पानी की सप्लाई जो है वो ज्यादातर वहाँ पे पानी के टैंकर के थ्रू होती है, लेकिन जो कम्युनिटीज हैं जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे डायरेक्ट पानी के सोर्सेज जो है अगर मौजूद हैं तो वो कंटामिनेटेड वाटर है, क्योंकि पाकिस्तान में कराची जो है वो सी लेवल के बहुत ही करीब है, समंदर साथ है, सी लेवल भी काफी करीब है, तो वहाँ पे पानी जो है वो इसको हम लोग नमकीन पानी कहते हैं, ब्रिटिश वाटर होता है। तो हम लोग ने सोचा कि अगर वहाँ पे हम लोग 2 या 3 ऐसे प्रोजेक्ट करें जिसमें हम पानी को कम्युनिटीज के अंदर बनाएं उसको, जिससे एक वक्त में कोई 5-10 हजार लोग जो है उससे मुस्तफीद हो सकें रोजाना, और इस तरह का प्रोजेक्ट बनाएं कि एक पानी की सोर्स बनाएं। तो हमने वहाँ पे सबमर्सिबल पंप एक सोर्स होती है पानी की जो कि हम लोगों ने वहाँ पर प्रोवाइड की, और उसके ऊपर क्योंकि ब्रिटिश वाटर है तो हम लोगों ने उसके ऊपर एक फिल्ट्रेशन प्लांट जो है उसका मॉडल बनाया। तो ये एक मॉडल प्रोजेक्ट बनाया कि सबमर्सिबल पंप हो जिसके साथ फिल्ट्रेशन प्लांट हो ताकि पानी साफ हो सके, और वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो जिस तरह यहाँ पे भी हम लोग अमरीका में ग्रोसरी स्टोर पे जाते हैं या कभी आपने देखा होगा कि स्ट्रीट पे एक वो लगे होते हैं, स्टेशन लगे होते हैं, लोग अपनी बॉटल लेके आते हैं उसमें कॉइन्स डालते हैं और पानी भर लेते हैं। तो इसी तरह हमने सोचा कि इस तरह की कम्युनिटी के अंदर हो और लोग वहाँ पे अपनी बॉटल लेके आए और पानी लेके जा सकें। तो अगर इस तरह के 3 या 4 मॉडल प्रोजेक्ट किए जाए तो दूसरे लोगों को भी इंकरेजमेंट होगी कि वो भी ऐसे प्रोजेक्ट में हिस्सा लें। और कराची जो है बहुत बड़ा शहर है, मोहल्ले मोहल्ले अगर इस तरह की चीजें लग जाए तो लोग जो है वो जैसा टैंकर से पानी आता है उससे हट के उनके पास अपनी सोर्स ऑफ वाटर हो जाए।
तो ये
प्रोजेक्ट हम लोगों ने तैयार किया और ये जैसा मैंने कहा 6 से 9 माह के अंदर अंदर
हो गया। तो इलियास चौधरी साहब, इसके लिए एक प्लांट जो लगता है, जो आपने लगाया, कम से कम कितनी लागत का एक प्लांट लग सकता है या लग जाता है?
जी, इसमें जो सबमर्सिबल पंप प्लस जो फिल्ट्रेशन प्लांट है $27,000 इसके खर्चा है।
$27,000 या 27 लाख, 27 लाख रुपए इस वक्त।
तो इसमें जो तकरीबन हमारे जो फिल्ट्रेशन प्लांट होता है, इसमें बहुत सी इसके कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ जो है जर्मनी से आते हैं, कुछ चाइना से आते हैं, कुछ यूएसए से भी होते हैं। इन तमाम कंपोनेंट्स को मिला के एक असेंबली लाइन बनाई जाती है पानी को साफ करने की। तो ये तमाम आइटम्स क्योंकि पाकिस्तान में इंपोर्टेड आते हैं तो इस अंदाज में इसकी जो ओवरऑल प्राइस है इंक्लूडिंग ऑल द ओवरहेड, ऑल द लेबर वर्क, एवरीथिंग $27,000।
अच्छा, तो लेकिन ये कम से कम
3 प्रोजेक्ट किए वहाँ पे।
अच्छा,
जिनमें से एक जो है वो ह्यूस्टन कराची स्टेशन में क्योंकि हमें असिस्ट किया था। इसके अलावा 2 और प्रोजेक्ट हमने न्यू कराची और बिहार कॉलोनी में डैलस की कम्युनिटी और अटलांटा की कम्युनिटी के नाम से किए हैं वहाँ पे।
अच्छा, तो ह्यूस्टन वाला ये प्लांट है जो अभी ताजा तरीन पिछले माह आप लोगों ने इंस्टॉल किया है। अच्छा, और इसके लिए जो जमीन पर वहां पर काम करने वाले थे, वहां पर आपका जो विंग था, जो चैप्टर था इस्लामाबाद में, उसने उसको अमल दरामद उस पर कराया
और कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज मॉनिटरिंग करना कि प्रोजेक्ट सही अंदाज में हो रहा है वो सारी चीज।
अच्छा, वो उनका काम था। लेकिन ये जो है कराची ह्यूस्टन सिस्टर सिटी का जो चैप्टर है कराची में, उसका इसमें क्या रोल था? सिस्टर सिटी के पैटर्न चीफ मजीद अजीज हमारे साथ कराची से मौजूद हैं टेलीफोन पर। तो बताइए मजीद अजीज साहब कि कराची ह्यूस्टन सिस्टर सिटी एसोसिएशन का ये जो भी ताजा प्लांट लगा है उसकी तंसीब में क्या किरदार रहा?
देखिए, जैसे कि सईद शेख ने बताया, सईद शेख एक्चुअली आप देखा जाए तो सईद शेख का रोल बहुत ही अहम है और बहुत ही मोटिवेटिंग रोल है। और उसने जब ये हमें इन्फॉर्म किया कि इस तरीके का प्लान लग रहा है, और क्योंकि सिस्टर सिटी एक सिटी में नहीं होती, दोनों शहरों में होती है, अलग अलग मुल्कों में, तो कराची का जो था उसमें उन्होंने हमें कांटेक्ट किया सईद शेख से, जिनसे हमारा बड़ा फ्रीक्वेंट रब्ता है। और उन्होंने कहा कि जी ये प्रोजेक्ट हमें इसको कामयाब करना है और हमें हेल्पिंग हैंड की भी उसमें जो बड़ा किरदार है। तो मेन जो काम था, जो जहाँ फंड्स लेने, उसकी जो प्लानिंग थी, आइडियाज थी, वो तो ह्यूस्टन से हुई है। कराची में हमारा काम ये था कि ये जो चीज जो सही से बताए थे कि मेयर का इन्वॉल्वमेंट, ह्यूस्टन के मेयर का हुआ, 1 साल लग गया एक कमेटी बनने में। इसी तरह जब मुस्तफा कमाल साहब ने इधर ये बनाई थी कमेटी, उसमें मैं भी उस कमेटी का मेंबर था और भी कराची के कुछ बिजनेसमैन और दूसरे थे उसमें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि हुकूमत बदल गई है, लोकल बॉडीज की बात ही खत्म हो गई, तो ये सिलसिला कराची में रुक गया था। ये आरओ प्लांट जो लगा है और जो रोल ह्यूस्टन का जो उसमें है, उससे हमारी जो कराची की ऑर्गेनाइजेशन है वो उससे मोटिवेट हो गई और हमने अब इसको एक ढांचा देना शुरू कर दिया है और इसको हम इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे। हमारा जो मकसद ये है कि क्योंकि मैं हूँ या मेरे कुछ रुफेकार हैं जो बिजनेसमैन हैं, जो सनअतकार रहे हैं, और सोशल एक्टिविटीज भी हम करते हैं, सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज, तो हमने इसको 2 हिस्सों में करना चाहते हैं। एक तो फ्रॉम द सोशल वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें हम ह्यूस्टन और कराची को किस तरीके से हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, और दूसरा बात यह है कि साथ साथ मैंने कहा चूंकि हम बिजनेसमैन हैं तो हम सिस्टर सिटी को जहाँ और चीजों को साथ लाना है, वहाँ हम चाहेंगे कि कराची के बिजनेस कम्युनिटी और ह्यूस्टन की बिजनेस कम्युनिटी का भी इसी पार्ट में आ जाए। जिसका मैं आपको एक दो एग्जांपल दूंगा कि जब मैं डेलीगेशन लेके ह्यूस्टन गया था 2007 में और ये बातें हमने वहां की थी. एक तो ह्यूस्टन को पाकिस्तान स्पेसिफिक बंदरगाह बनाना है और दूसरा में ये करना है कि ह्यूस्टन में जो मेडिकल टेक्नोलॉजी है, विंड एनर्जी है और ऑयल है, ये जो चीजें ऐसी हैं जो पाकिस्तान को बहुत जरूरत है और इसके लिए हम कोशिश करेंगे दो चीजें. एक तो हम करेंगे कि ह्यूस्टन कराची सिस्टर सिटी के साथ मिलके कराची चेंबर और कराची ह्यूस्टन सिस्टर सिटी, हम माई कराची एग्जीबिशन करना चाहते हैं ह्यूस्टन के अंदर, जिसके लिए हमने इनफॉर्मल हमने प्लानिंग शुरू कर दी है ह्यूस्टन से भी और कराची से भी. दूसरी बात हम ये कर रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे कि सही शेख और वहां से मोटिवेट करें वहां के बिजनेसमैन और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं कि वो डेलीगेशन कराची लाएं और मेडिकल टेक्नोलॉजी के अग्रीमेंट्स करें, जॉइंट वेंचर या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या इक्विपमेंट की जो हमें जरूरत है ताकि हमारी नई हॉस्पिटलें बने. और इसके साथ साथ आपको पता है कि पाकिस्तान की हुकूमत विंड एनर्जी के ऊपर काफी सपोर्ट कर रही है, उसमें एक बहुत बड़ा रोल ह्यूस्टन का हो सकता है और आपको पता है तेल के में तो वैसे ही ह्यूस्टन आगे है, तो इसको लाना चाहते हो. और हम ये चाहते हैं कि जो पाकिस्तान की मसनूआत है उसको हम वहां प्रमोट करें और इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी ह्यूस्टन कराची सिस्टर सिटी एसोसिएशन की और ये हमारा आइंदे के प्लान्स हैं. साथ साथ अगर हेल्पिंग हैंड और कोई प्रोजेक्ट यहाँ करना चाहती है ह्यूस्टन कराची के साथ तो हम इनके साथ फुल कोऑर्डिनेशन भी करेंगे और जिस किस्म की मदद चाहिए हम तैयार हैं.
बेहद शुक्रिया मजीद अजीज साहब, आप हमारे साथ रहिए गुफ्तगू में. अब हम शामिल करेंगे हमारे प्रोग्राम के अगले मेहमान हेल्पिंग हैंड यूएसए के डायरेक्टर प्रोग्राम इलियास चौधरी को, जो इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे साथ टेलीफोन पर मौजूद हैं. तो अस्सलाम वालेकुम एक बार फिर इलियास चौधरी साहब. इलियास चौधरी साहब,
ये फजलुर रहमान साहब हैं जो
फजलुर रहमान साहब. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. हेल्पिंग हैंड, दिमाग खराब हो चुका है. हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट पाकिस्तान के कंट्री डायरेक्टर जनाब फजलुर रहमान साहब हमारे साथ इस पर टेलीफोन पर मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम. बेहद शुक्रिया, क्योंकि बहुत बीच में वक्फा आ गया तो जहन से निकल गया कि इस वक्त इलियास चौधरी साहब हैं, क्योंकि आपकी तस्वीरें तो नहीं आ रही ना मेरे सामने नज़र. अच्छा, तो बताइए कि आपका ये तो प्रोजेक्ट जिसके बारे में तफसील से बात हुई और हम थोड़ा सा उस तरफ से हट गए थे पानी की गुफ्तगू से, तो अब दोबारा से हम बात करते हैं पीने के उस पानी के उस प्लांट की जो कि हेल्पिंग हैंड ने यहाँ लगाया कराची में. तो आप ये बताइए कि इस प्लांट को अब आपने लगा तो दिया, लेकिन इसको मेंटेन करने के लिए आपके क्या इंतजाम हैं?
जी, बहुत शुक्रिया यासमीन साहबा, आपने जो हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट को मौका दिया है कि इस वक्त वॉइस ऑफ अमेरिका से सुनने वाले जो है वो खास करके पाकिस्तान में, कि हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट जो पाकिस्तान के अंदर रिलीफ और डेवलपमेंट के काम करती है उनमें से एक काम जो है वो साफ पानी पीने के लिए जो है वो मुहैया करना भी है. वाटर फॉर लाइफ के जो प्रोग्राम का हमारा नाम है और उसी प्रोग्राम के तहत हमने न सिर्फ कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो है वो इस तरह के पंप कुएं और फिल्ट्रेशन प्लांट का जो है
तो
वो काम कर रहे हैं.
यहाँ
तक आपने नाजमाबाद के प्रोग्राम के बारे में पूछा है कि ये फिल्ट्रेशन प्लांट तो लग जाते हैं लेकिन इनको मेंटेन कैसे किया जाता है.
जी जी.
तो ये सुनकर हमारे सामीन के लिए इत्मीनान होगा इंशाल्लाह कि हेल्पिंग हैंड ने जहाँ भी वाटर फिल्ट्रेशन के प्लांट जो है लगाए हैं उसमें बुनियादी जो हमारा जो मॉडल है उसमें पंप को और उसके बाद फिल्ट्रेशन प्लांट को लगाने के बाद वहाँ एक मुस्तकिल एम्प्लॉयमेंट हम देते हैं एक बंदे को जो कि उस प्लांट की फुली निगरानी भी करते हैं और ना सिर्फ निगरानी करते हैं बल्कि वो लोगों को पानी भर कर पी देते हैं. अच्छा ये जो नाथ नाथना नाथ वाला जो प्लांट है इसमें बड़ी तादाद में यानी 2 लीटर के हिसाब से जो है वो वहाँ सप्लाई मिलती है जो फिल्टर होके लोगों को पानी मिलता है। तो इसमें लोग आते हैं वहाँ और पानी भरकर ले जाते हैं। जो फर्द वहाँ मौजूद होता है वो उसकी सफाई सुथराई मेम्ब्रेन की जो उसकी सबसे अहम चीज ये होती है कि अगर उसको साफ न रखा जाए उसको वक्त से तब्दील न किया जाए उसकी शट डाउन प्रॉपर तरीके से न किया जाए। हालांकि ये फुली ऑटोमेटिक प्लांट है लेकिन उसके बावजूद जो है उनकी लुक आफ्टर करना देखरेख करना बड़ा जरूरी है। बहुत सारे फ्लड के जो 2011-12 में भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने वाटर सैनिटेशन प्लांट लगाए हैं ये जो साउथ पंजाब का एरिया है सिंध में लगाए हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने जाकर देखा भी है कि वो वाटर सैनिटेशन प्लांट जो है वो काम नहीं कर रहे। उसकी वजह यह है कि वो मॉडल के अंदर जो एक खामी रह जाती थी वो ये थी तो जिस किसी अदारे के सपोर्ट किया जा रहा था उनके पास अमाउंट नहीं होती थी कि वो एक मुस्तकिल कोई एम्प्लॉयमेंट कुछ फर्क जो है ना वो वहां रखें। तो हमने उससे ये सबक लिया है लेसन लर्न किया है कि जब तक एक मुस्तकिल आदमी ना हो जो उसकी देखभाल ना करे उसकी लुक आफ्टर ना करे उसकी टेक केयर ना करे तो ये मुमकिन नहीं है कि वाटर सैनिटेशन प्लांट है। ये तो $27,000 का है और अगर आप $100,000 का भी लगा लें बड़ा प्लांट लगा लें तो जब तक उसको मेंटेन करने वाले लोग नहीं होंगे उसकी टेक करने वाले लोग नहीं होंगे उस वक्त तक ये फायदे के बजाय उल्टा नुकसान।
तो उसके लिए आप फिर लोग इसके लिए पेमेंट भी करते हैं पानी के लिए?
इसमें देखें ये जो इस तरह के जो प्लांट होते हैं जिनको अगर आप सस्टेन करते हैं तो ये लोग पानी की कीमत नहीं अदा करते। बेसिकली इसको करते हैं हम कहते हैं कि कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन और एंड इन्वॉल्वमेंट। हमने जो है वो एक तकरीबन जो है 5 लीटर का 2 रुपए जो पाकिस्तान में 2 रुपए लेते हैं ताकि वो ये महसूस करें क्योंकि हमने 2 रुपीज पे करके यहाँ से पानी लिया है। अब ये जो एक ऐसी चीज है कि लोगों को एक तो कॉन्फिडेंस का डेवलप होता है और दूसरा ये है कि उनको एहसास की जिम्मेदारी भी होता है। हालांकि 2 रुपए पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सेंट का भी मेरे हल में कुछ पता नहीं कितना जो है ना हिस्सा बनेगा वो इसकी बहुत कम वैल्यू होती है लेकिन उसके ये जो सिर्फ 2 रुपीज या 5 रुपीज की जो एक टोकन की रखी जाती है उसका मतलब ये होता है कि कम्युनिटी अपने आप को ओनरशिप महसूस करे और वो
और उसकी देखभाल भी और उसकी हिफाजत भी करे। बेहद शुक्रिया फजलुर्रहमान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इन प्रोजेक्ट से कुछ फायदा उठाने वाले कराची से बिहार कॉलोनी के मिस्टर उमेर अनवार। तो उमेर अनवार साहब अस्सलाम वालेकुम। उमेर अनवार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाजिया हमारे साथ मौजूद है नाजिया हबीब या उमेर कराची से आपको हमारी आवाज आ रही है? उमेर साहब नाजिया आपको हमारी आवाज आ रही है? मेरा ख्याल है कि हमारा उनसे रब्ता मुनक़ता हो गया तो इस वक्त हमारे साथ लेकिन हम कोशिश करेंगे उनसे दोबारा रब्ता हो जाए और फिर हम बताएंगे कि जो लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं वो उनके क्या तासुरात हैं इस प्लांट के बारे में। और हमारी प्रोड्यूसर कह रही हैं कि क्यों ना एक ब्रेक ले लें तो ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन के प्रोग्राम हरदम रवा है जिंदगी में हमारे आज के मेहमान हैं कराची शहर के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद के शहरियों को पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए हाल ही में वाटर पंप और वाटर फिल्टर प्लांट लगाने वाले अमेरिका और पाकिस्तान में कायम 2 इदारे ह्यूस्टन कराची सिस्टर सिटी एसोसिएशन और हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट। इन इदारों की नुमाइंदगी कर रहे हैं ह्यूस्टन कराची सिस्टर सिटी एसोसिएशन के सदर मोहम्मद सईद शेख जो पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स यूएसए के सदर भी रह चुके हैं। हमारे मेहमान हैं हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट यूएसए के डायरेक्टर प्रोग्राम इलियास हसन चौधरी। हमारे मेहमान हैं कराची ह्यूस्टन सिस्टर सिटी एसोसिएशन के पैट्रन इन चीफ मजीद अजीज और हमारे मेहमान हैं हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट पाकिस्तान के कंट्री डायरेक्टर फजलुर रहमान। ہمارے مہمانوں کے تصویری تعارف اور اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیجز پر سننے کے لیے ہمارے لنکس ہیں facebook.com/hardamramahezindagi اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/yasminjameelvoaurdu. عمیر انور ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے. السلام علیکم عمیر انور صاحب. عمیر انور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو بولیے اگر آپ کچھ بول سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے مجھ تک آپ کی آواز نہ آ رہی ہو لیکن ہمارے سننے والوں تک پہنچ جائے. کچھ بتائیے کہ آپ کہاں ہیں اس وقت. مجھے تو ان کی آواز نہیں آ رہی تو میرا خیال ہے کہ کوئی ٹیکنیکل خرابی اس وقت ہے جو کہ ہم ان سے بات نہیں کر پا رہے. تو
ہلو
جی کون سا
یاسمین صاحبہ
جی
میں ایک بات بتانے بھول گیا کہ جی 10-15 دن میں ہمارے میئر اور ڈپٹی میئر حلف انشاءاللہ اٹھائیں گے اور میں نے ان کو ڈپٹی میئر سے میری بات ہو چکی ہے کہ اس قسم کے جو پروجیکٹ ہیلپنگ ہینڈ نے ہمیں کراچی میں دیا ہے اس کو ہم ریپلیکیٹ کریں اور ہم صحیح شیک کے تھرو یہ ہم کانٹیکٹ کریں گے ہیلپنگ ہینڈ کو بھی کہ کراچی میں جس طرح دوسرے 2-3 لگا رہے ہیں تو کچھ ایسی اور جگہ بھی ہیں جہاں بہت ضرورت ہے پانی کی. اور پانی آپ کو پتا ہے جسے بتایا گیا کہ کئی جگہ کنٹامینیٹڈ پانی آ رہا ہے اور ہر کوئی افورڈ کر سکتا نہیں ہے بوٹل واٹر. تو یہ تو نعمت ہے ہمارے لیے کراچی والوں کے لیے پانی کا ایک ایک قطرہ ہمارے لیے تو نعمت ہے.
کوشش کریں گے کہ ہم نے
میری بات ہو چکی ہے ڈپٹی میئر سے تو جب یہ ووٹ لے لیں گے اس کے بعد میں صحیح شیخ سے ان کا ہم کانفرنس کال کر کے اس کے اوپر ہم کام کریں گے.
بہت شکریہ آپ نے ہمارے اس پروگرام میں اس چیز کی ایک خوشخبری سنائی کراچی والوں کو کہ آپ ایسے اور بھی پروجیکٹس لگائیں گے. لیکن ہم کوشش کریں گے کہ پہلے اگر ہمارے جو بینیفیشریز ہیں ان سے بات ہو جائے. اگر کوئی بھی نازیہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں یا عمیر. اچھا لیکن نہیں ہماری ان سے بات تھی. فضل الرحمان صاحب آپ سے میں یہ ضرور پوچھوں گی کہ آپ نے اتنے سارے جو پانی کے پروجیکٹس ہیلپنگ ہینڈ فار ریلیف اینڈ ڈیولپمنٹ نے لگائے ہیں پاکستان بھر میں کچھ مختصراً ان کا بتائیے کہ یہ کس طرح لگتے ہیں اور آپ کس طرح ان کا فنڈز اکٹھے کرتے ہیں اور کس طرح ان کو انسٹال کروا دیتے ہیں کہ وہ آپ نے بتایا تھا پروگرام سے پہلے کہ ایسے علاقوں میں انڈیویجولز آپ کو ڈونیشنز دیتے ہیں اور ان کے نام پر آپ کوئی ہینڈ پمپس یا کنویں کھدوا دیتے ہیں. فضل الرحمان صاحب
بہت شکریہ آپ کا. ہیلپنگ ہینڈ جو ہے وہ اس میں اس طرح کے علاوہ پورے ہمارا سرپارکر کے اندر گزشتہ سال 2016 میں رہا ہے. الحمد للہ ہیلپنگ ہینڈ نے 115 واٹر کی پروجیکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ کیے ہیں. اس میں تقریباً 56 کمیونٹی ہینڈ پمپس کے ہیں اور 21 سولر پمپ جو ہے نا مل جائے تقریباً 33 جو ہے واٹر ویل ہیں اور 2 فلٹریشن پلانٹ لگائے ہوئے ہیں.
فضل الرحمان صاحب آپ کی ٹیلی فون کی بھی کوالٹی بہت خراب آ رہی ہے. الیاس چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیوسٹن سے اگر آپ اس میں ایڈ کریے. جی الیاس چودھری صاحب آپ بتائیے.
ہاں بیسکلی جیسا فضل بھائی بتا رہے تھے ابھی ہمارے پروجیکٹ اس طرح ہوتے ہیں کہ ہم لوگ تمام فنڈ ریزنگ جو ہے وہ یو ایس اے میں کرتے ہیں
جی
اور ہمارا جو ادارہ ہے ہیلپنگ ہینڈز فار ریلیف اینڈ ڈیولپمنٹ یہاں پہ ایک بہت ہی پرانا ادارہ ہے. 1969 میں وہ قائم ہوا تھا. اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کہلاتا ہے. تو ہیلپنگ ہینڈ جو ہے یہ اس کی ایک سبسیڈری ہے. بیسکلی اتنا جو ہے اس کے لوکل پروجیکٹ یو ایس اے میں اتنا بلیو کرتی ہے اور جو پروجیکٹ انٹرنیشنل لیول پہ ہوتے ہیں وہ ہیلپنگ ہینڈ کرتی ہے. تو ہم لوگ تقریباً 14 ڈفرنٹ کنٹریز میں رجسٹرڈ ہیں. تو یہ پانی کے پروجیکٹ ہیں اس کے لیے ہمیں فنڈنگ جو ہے وہ انڈیویجل ڈونر یا کچھ کمیونٹیز میں ہم فنڈ ریزنگ کرتے ہیں اور ان کمیونٹیز کے نام سے صرف پروجیکٹ کرتے ہیں فیلڈ کے اندر. یہاں پہ امریکہ میں ہمیں بہت سے انڈیویجل نے جو ڈونیشن دیتے ہیں مختلف پروجیکٹ کی ہر ایک پروجیکٹ کی مختلف پرائز ہوتی ہے تو ان کے نام سے ہم لوگ وہاں پہ ایک تختی لگاتے ہیں ہر پروجیکٹ کے اوپر تاکہ ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں بہتر انداز میں رپورٹ بیک کر سکیں. اس کے علاوہ جو لوکل لوگ جو اس پانی سے مستفید ہو رہے ہیں وہ ان لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھ سکیں. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے ایک ہینڈ پمپ کے لیے پیسے دیا ہے تو ہم لوگ وہاں پہ تختی لگاتے ہیں کہ لوگ جو ہیں ان فیملی کو اس فیملی کو دعا
और फिर उनके नाम से वो सदका जारी हो जाता है और आप वो इंस्टॉल यानी फंडिंग वो दे देते हैं और उनके नाम का आप एक कुआं खोद देते हैं या उनके नाम का कोई प्लांट लगा देते हैं या हैंडपंप लगा देते हैं। वाह वाह बहुत अच्छे।
और इस तरह ये होता है कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें सोलर पावर ये फिल्ट्रेशन प्लांट है ये बड़ी कीमत जो होते हैं इसमें अगर कोई मुखैर हजरात पूरा से पूरा पैसा दे दें तो हम उनके नाम से कर लेते हैं प्रोजेक्ट। कुछ हमने थर में किए ऐसे लेकिन ज्यादातर ये प्रोजेक्ट जो है ये एक पूरी कम्युनिटी आती है टुगेदर और वो करती है। जैसा अभी बिहार कॉलोनी का जिक्र किया आपने
जी।
तो जो बिहार कॉलोनी का प्रोजेक्ट है वो हमारे यहाँ पे जो प्लांट है सॉरी जो डैलस की कम्युनिटी है वहाँ पे हमने स्पेशल फंड रेजिंग की। उस फंड रेजिंग के दौरान जितने भी पैसे जमा हुए वो प्रोजेक्ट हमने डैलस की कम्युनिटी के नाम से किया। इसी तरह न्यू कराची में एक प्रोजेक्ट है क्योंकि हम लोगों ने एटलांटा की कम्युनिटी के नाम से किया और ये जो आपको अभी बताया है जिसकी बात हुई है वो ह्यूस्टन के नाम से है और ह्यूस्टन में क्योंकि सबसे बड़ा इदारा जो कराची से रिलेटेड है वो ह्यूस्टन कराची सिस्टर सिटी एसोसिएशन है। सही शेख साहब और इनकी पूरी टीम ने हमारे साथ बेहतरीन तावन किया इसमें
और ये इस तरह ये उनके नाम से लग गया। बेहद शुक्रिया लियाज चौधरी साहब। और हम अपने सुनने वालों को बता दें और आपको भी बता दें फजलुर रहमान साहब और इलियास चौधरी साहब और अपने सभी मेहमानों को बता दें कि जब हमने आपके बारे में मालूमात और तस्वीर प्रोग्राम के फेसबुक पेज पर पोस्ट की तो बहुत ज्यादा लोगों ने आप लोगों को सराहा और तारीफी कमेंट्स भी लिखे। और सिंध के जिला दादू की तहसील जूही के गांव हीरो खां से एक लिसनर है दिलदार लगारी, उन्होंने ये लिखा कि दादू की तहसील जूही जिसकी 14 में से 7 यूनियन काउंसिल्स काचू के नाम से जाने जाने वाले तपते सहराई और मैदानी इलाके में वाकई हैं और जिसे सहराए थर का जुड़वा भाई कहा जाता है, पानी की शदीद किल्लत है और दिन भर आपको यहाँ बच्चे और औरतें सर पर मटके और घड़े उठाए पानी की तलाश करते नजर आएंगे। उनका कहना है कि उनका नौजवानों का एक ग्रुप है जो अपने इलाके में सियासी और समाजी कामों में सरगर्म है और इसी ग्रुप की नुमाइंदगी करते हुए कहते हैं कि अगर आपके मेहमान उनके इलाके में पानी के मसाइल हल करने में कुछ मदद करें तो वो उनके साथ हर मुमकिन तआवुन करेंगे। और इन्होंने अपना फोन नंबर भी हमें भेजा है। तो फजलुर रहमान साहब आप कुछ कहेंगे या इलियास चौधरी साहब आप कुछ कहेंगे?
मैं मशहूर हूँ आपने एक तरह के प्रोग्राम के जरिए से लिंक करवा दिया हमारा उनके साथ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जहाँ भी जरूरत इस तरह के पानी की होती है हम साल भर जो है वो लोग हमें कंटेक्ट करते हैं और जब ये फंड देख कर लिहाज चौधरी साहब इस तरीके से उन्होंने बताया है कि वहाँ से हमें ये इंटीमेट करते हैं तो जहाँ जहाँ लोगों ने हमें बताया होता है कि जहाँ पानी की जरूरत है और हम उसकी असेसमेंट करने के बाद वहाँ उन लोगों के साथ मिलकर कम्युनिटी के साथ मिलकर वहाँ कुएं भी खोदते हैं और उसके साथ साथ जो है वो फिल्ट्रेशन प्लांट या जो दूसरे हैंड पंप है उनकी इंस्टॉलेशन करते हैं।
तो इनके लिए क्या
ये जो जरूर हमारे साथ रब्ता करें और मेरा नंबर भी आप शेयर कर सकते हैं ईमेल के जरिए से वो मुझे अपनी पूरी इंफॉर्मेशन दे दें तो इंशाल्लाह हम उनके इलाके में भी जितना मुमकिन होगा 2016 में कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें।
बिल्कुल। और इनको इनको ये था कि कम से कम एक हैंड पंप जरूर एक हैंड पंप जो है वो आप इनके गांव में लगा दें तो हम ऐलान कर दें कि आप अच्छा तो
क्यों ये हैंड पंप हमारा काम ही यही है।
अच्छा।
और उन्होंने तो स्पेशली आप इस प्रोग्राम को देखा सुना और उसके बाद जो उन्होंने इसको अप्रिशिएट भी किया है तो हमारे जहाँ और जगहों पर इंस्टॉलेशन होती है
तो इनके यहाँ भी आप इंशाल्लाह कर देंगे। इसी तरह
हैंड पंप इंस्टॉल करेंगे।
हाँ तो फजल रहमान साहब सराय थर के जो जूही का जिला का एक और गांव भी है उसका नाम पता नहीं लव कुछ भेजा है खालिद हुसैन कुरेजो ने, उन्होंने भी कहा कि हमारे गांव में पानी का एक हैंडपम्प लगा दें तो इनके लिए भी हम ऐलान कर दें कि आप लगा देंगे इनके यहाँ हैंडपम्प?
जी जरूर। दादू की जो अगर आपने दादू के हवाले से ये बात कर रहे हैं तो दादू में अगर हमने काम शुरू किया एक पंप लगाया तो जाहिर है कि एक पंप लगाने के लिए काफी मुश्किलात होती हैं वहाँ सारी चीज मूव करना और पहुँचना। तो अगर हमने वहाँ असेसमेंट करने के बाद कोशिश ये करेंगे कि एक से ज्यादा जो है तादाद में जो प्रोजेक्ट हैं उनको वहाँ इंस्टॉल कर सकते।
अच्छा इसी तरह जी आजाद पाकिस्तानी कश्मीर के जिला बाग से एक हमारे लिसनर हैं उन्होंने भेजा है अपना मुस्तफ़ा शौकत अलवी, इन्होंने भी कहा है कि ये आप लोगों के साथ तआवुन करेंगे लेकिन अगर आप इनके गांव में एक अदद वाटर पंप और एक अदद वाटर टैंकर लगाने में इनकी मदद करें तो।
जी जरूर वो रब्ता करें अपने अपने मंसूबे को हमारे पास को तो ये बाग बहुत नजदीक है यहाँ से हमें इस्लामाबाद में हमारा ऑफिस है यहाँ वो पहुँचाएं और इंशाल्लाह हम अपने मंसूबा जो 2016 के हैं उनके अंदर रखने की कोशिश करेंगे।
अच्छा
असल में ये जरूर मैं बात बताना चाहता हूँ कि ये जो सिस्टम असल में ऐसा होता है हमारा कि जब भी कोई एक साल के शुरू में हमारे तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रपोजल हम सबमिट करते हैं और हमें फंड मिलते हैं तो पूरा साल उसके मुताबिक हम करते रहते हैं इंस्टॉलेशन और बुकिंग और जहाँ तक पानी या पानी की जो स्कीमें हैं वो बचाते हैं। और अगले साल के लिए हम इस तरीके से जो लोगों की डिमांड होती है या जिन एरिया का वो तारफ कराते हैं हमें और हम असेसमेंट करने के बाद उनको अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। तो बाद लोग ये होता है कि प्रोग्राम सुनने के बाद बहुत डिसहार्ट हो जाते हैं कि हमें अभी महीना हो गया, अभी दो महीने हो गए, अभी तक कुछ चीज नहीं मिली है। तो मेरे ख्याल में ये मैं आपके प्रोग्राम की हिफाजत से कहना चाहता हूँ कि आपने वो हमें सारी इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँचाएं और इंशाल्लाह हम अपने प्रोग्राम में डाल देते हैं इसको। और जो ही इस दौरान इस साल हमें मौका मिलता है तो हम इन इलाकों में जरूर इनको पानी की खुशी के लिए जितनी मुमकिन हुई वो इंशाल्लाह।
इसी तरह सांगड़ सिंध के चक नंबर 40 से दीन मोहम्मद बलोच ने भी फेसबुक पर लिखा था कि उनके यहाँ पानी का मसला है और इन्होंने अपना फोन नंबर नहीं भेजा। तो आप सबसे और जो मजीद हमारे से रब्ता करना चाहते हैं हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट यूएसए या पाकिस्तान से और पानी के मसले के हवाले से, तो हम इनके लिंक्स फेसबुक के और इनके जो वेबसाइट के लिंक्स हैं हम अपने प्रोग्राम के फेसबुक पेजेस पर बाद में पोस्ट कर देंगे, तो आप हमसे रब्ता कीजिए। तो फजलुर रहमान साहब, आप इन चारों के लिए कम से कम जिन्होंने आज हमारे प्रोग्राम में आपसे रब्ते की कोशिश की है, हम तवक्को करेंगे कि बहुत ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे और जब जल्द अज जल्द इनके मसाइल को हल करने में मदद करेंगे, क्योंकि इस तरह ये कि आइंदा भी हम और इस पर हम एक फॉलो अप प्रोग्राम भी करेंगे ताकि हमें अंदाज़ा हो कि हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से कितने लोगों को फ़ायदा पहुंचा और आप कोई भी कितने लोगों तक रसाई हो सकी इस प्रोग्राम के नशर होने के बाद। तो इसी तरह हम मजीद अजीज साहब आपसे भी बात, मजीद अजीज साहब हमारे साथ मौजूद हैं? नहीं है मजीद अजीज साहब से शायद हमारा रब्ता।
हेलो हेलो
जी मजीद अजीज साहब, आप भी ये जैसे कि हमारे लिसनर्स हमसे रब्ता कर रहे हैं और हमारे साथ टेलीफोन पर भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, आप इनको सुनिए ये क्या कह रहे हैं। जी कौन साहब?
जी
उमेर साहब, आप हमारे साथ हैं? उमेर अनवर साहब, उमेर अनवर साहब से जब मैं बात करती हूँ तो रब्ता कट जाता है। तो मेरा ख्याल है कि आप भी इस सिलसिले में इनसे तआवुन जारी रखेंगे और यही इस प्रोग्राम का मकसद है आज के प्रोग्राम का, कि लोगों को पता लगे कि आप जैसे लोग जो कि दूर दूर भी बैठे हैं और उसके बावजूद अपने मुल्क के लिए और अपने उन लोगों के लिए जहाँ पानी की फरहमी एक मसला बनी हुई है कुछ ना कुछ कर रही हैं। तो इलियास चौधरी साहब, आप हमारे सुनने वालों को ये बताइए कि अमरीका में फंड रेजिंग का सिस्टम क्या है और इसे कैसे कानूनी हैसियत हासिल है और इनके लिए किन शराइत को पूरा करना जरूरी होता है। इलियास चौधरी
साहब
जी, आ रही, आप बोलिए।
इसमें मैं पिछले सवाल को थोड़ा सा ऐड करते हुए जो आपका अभी सवाल है उसको भी जवाब दे देता हूँ।
जी जी,
हम लोग ज्यादातर प्रोजेक्ट हम लोग करते हैं, इस वक्त हमारे पास कोई 200 प्रोजेक्ट से ज्यादा की प्रपोजल ऑलरेडी पाकिस्तान ऑफिस में जमा कराई हुई है।
अच्छा।
तो होता जाए तो ये है कि जहाँ भी कोई खुदा न खासा कोई तुफानी आती है, फ्लड आ जाता है या वहाँ पे अर्थक्वेक आता है या ऐसे इलाके, तो उसमें हम लोग जाकर रिलीफ एक्टिविटीज करते हैं। लेकिन रिलीफ एक्टिविटीज के बाद हम लोग चाहते हैं कि उसी इलाके में रहते हुए हम कुछ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स करें और उन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में और भी बहुत से प्रोजेक्ट हैं, लेकिन इसमें एक प्रोजेक्ट पानी का होता है। तो बहुत से हमारे जो प्रोजेक्ट हैं वो इसी तरह आते हैं कि हम लोग किसी इलाके में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ, हम लोग उस इलाके में गए और वहाँ पे हम लोगों ने ये चीजें देखी कि ये पानी का मसला है, तो हमने वो चीजों को सॉल्व करने की कोशिश की। तो उसमें जैसा फजल साहब ने कहा कि अगर सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट है कहीं पे तो वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमारी थोड़ी सी लागत ज्यादा होती है, उसमें हमें थोड़ी सी ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती है कि स्पेशल एक प्रोजेक्ट के लिए हम लोग को एक टीम भिजवानी होती है। लेकिन अगर एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई आफत आई हो तो वहाँ पे सब एक ही तरफ एक ही जगह 10-15 प्रोजेक्ट जमा हो जाते हैं, तो उनको करने में हमें लागत भी कम आती है और आसानी इसलिए होती है कि एक ही वक्त में एक बहुत बड़ी कम्युनिटी को हम लोग सर्व कर लेते हैं। अमरीका में हमारी ये रिक्वायरमेंट होती है कि अगर जिस तरह पाकिस्तान में हमारा अपना ऑफिस है तो हमारे पाकिस्तान के ऑफिस के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने साइन किया हुआ है। यहाँ पे IRS जो है, जो कि इदारा है जो कि टैक्स और बाकी चीजों का ख्याल रखता है, तो हम लोग 501(c)(3) ऑर्गेनाइजेशन है IRS के साथ। इसका ये मतलब है कि हम लोग ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसको कोई आदमी डोनेट करता है तो वो एट द एंड ऑफ द ईयर वो अपनी उस पैसे की टैक्स डिडक्शन ले सकता है। अगर अमरीकी हुकूमत जो एक बात का ख्याल करती है कि जो पैसा इस्तेमाल हो रहा है वो किस अंदाज में हो रहा है, जिस मकसद के लिए हमने जमा किया वो हो रहा है या नहीं, तो हमें हर साल अपनी एक रिपोर्ट जमा करानी होती है IRS को, जिसमें हमें बताना होता है कि हमने जिस तरह 2000 लेट्स से $200,000 पानी के प्रोजेक्ट के लिए हमने यूज किए तो हमने कहाँ कहाँ प्रोजेक्ट किए उनकी लिस्ट बतानी होती है। अगर उस लिस्ट में हमने किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे यहाँ पे हम अक्सर में अगर हेल्पिंग हैंड काम कर रही है लेकिन कुछ और लोग जिन्होंने जैसे सांगड़ का जिक्र किया उनकी अपनी भी ऑर्गेनाइजेशन है लोकल लेवल पे अगर वो हमारे साथ ताउन करना चाहेंगी तो पहले हम लोगों का एक प्रोसेस होता है कि हम उस ऑर्गेनाइजेशन का बैकग्राउंड चेक करते हैं हमारे लॉयर के थ्रू और वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम ये देखते हैं कि उसका कोई बैकग्राउंड में ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं जो कि हमें आगे चल के हॉन्ट कर दे कि भाई ये लोग जो थे ये सही लोग नहीं थे या इनके बैकग्राउंड में कोई प्रॉब्लम थी। तो हम लोग पहले एक बैकग्राउंड चेक करवाते हैं उनसे पेपर वर्क लेते हैं ये देखना चाहते हैं कि उनके जो बोर्ड के मेंबर्स हैं उनके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं उनका क्या बैकग्राउंड है। तो एक पूरा बैकग्राउंड चेक करने के बाद हम लोग जब तसल्ली कर लेते हैं तो फिर हम लोग उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक एमओयू साइन करते हैं कि ये हम आपके इलाके में आके ये दो या तीन पानी के प्रोजेक्ट करेंगे और इसमें इतनी लागत होगी हम चाहेंगे कि आपका इतना ताजन हो हमारा इतना ताजन हो। तो ये एक हमारा प्रोसीजर है जिसको फॉलो किए बगैर हम लोग अमरीका में ये रफाई काम नहीं कर सकते।
अच्छा,
तो ये चीजें थोड़ी बहुत जो यहाँ की गवर्नमेंट की पूरी रिक्वायरमेंट है वो हम पूरी करते हैं ताकि हम कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसे लोगों के साथ काम ना करें जिनके बैकग्राउंड में कोई दहशतगर्दी हो या उनके बैकग्राउंड में कोई नेगेटिव चीज हो कि उन्होंने कहीं कोई बिजनेस का काफला किया था या इस तरह का। तो वो पूरा मेक श्योर करते हैं हम लोग अपने लॉयर्स अपने जो एक पूरी टीम है उसके जरिए तो फिर हम पार्टनरशिप के थ्रू वो प्रोजेक्ट कर लेते हैं। लेकिन कई जगह पे जैसा मैंने कहा कि हम खुद जाके वहां पे सैलाब आया था हम खुद गए वहां पे हमने खुद देखा तो फिर हम लोग वो प्रोजेक्ट खुद ही करते हैं उस इलाके में।
अच्छा,
तो इस तरह होता है ये प्रोसीजर। इसमें पूरी कोशिश है इसकी ये जो हमारे पूरे सिस्टम है उसके बेस पे यहाँ अमरीका में एक चैरिटी नेविगेटर के नाम से एक इदारा है जो अमरीका की कोई 8,000 या 10,000 ऑर्गेनाइजेशन है उनको हर साल रेटिंग देता है। उनकी जो टॉप रेटिंग होती है वो होती है 4-star रेटिंग उसको कहते हैं 4-star रेटिंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से ये एहसान है कि पिछले 4 साल से लगातार हमें 4-star रेटिंग मिल रही है हमारे जो हर साल की रिपोर्ट होती है उसके बेस पे। और ये उन्होंने हमें बताया चैरिटी नेविगेटर में कि अमरीका में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनको लगातार 4 साल तक ये रेटिंग मिली हो 8% ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है 8%। तो आप समझ सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है वो टॉप 8% ऑर्गेनाइजेशन में है ऐसे जो कि बिल्कुल IRS की रिक्वायरमेंट जो पैसे किस अंदाज में इस्तेमाल होने हैं उसकी रिक्वायरमेंट उनको पूरी
करते हैं। और इसके अलावा ये कि आपको फिर गवर्नमेंट भी यहाँ ग्रांट्स देती है या सिर्फ पाकिस्तानी अमरीकी ही आपके साथ शामिल है?
जी अभी तक हम लोगों ने ये किया है कि हम लोग 10 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है हमने 2005 में जब पाकिस्तान में अर्थक्वेक आया था जब से काम शुरू किया था हमने शुरू में ये फैसला किया था कि हम कोई भी किसी किस्म की ग्रांट नहीं लेंगे ना तो पाकिस्तान में लेंगे किसी से डोनेशन सिर्फ हम लोग इंडिविजुअल से लेंगे। और उसकी रीजन ये थी कि हम लोग कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बनाना चाहते थे प्रोजेक्ट्स के कि जिसमें किसी और का बाहर से अमल दखल ना हो। मसलन अगर पानी का प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं तो जैसे फजल रहमान साहब ने बताया कि उसको हम लोग लेके किस तरह आगे चलेंगे पूरा सिस्टम बनाएंगे जब हम लोग ये मुतमइन हो जाएंगे कि हाँ हमारे पास ये फुल प्रूफ सिस्टम है जिसको हम लोग लोगों के सामने पेश कर सकते हैं फिर हम लोग ग्रांट्स के लिए ट्राई करेंगे। तो अब हम लोगों ने फैसला किया है कि हम लोग इस पोजीशन में हैं कि हम USA एड जो है उसकी ग्रांट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम लोगों ने लास्ट ईयर स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ USA की एक जो वहाँ पे एम्बेसी है इस्लामाबाद में वहाँ पे हम लोगों ने एक $50,000 की उन्होंने हमें वेरी स्मॉल ग्रांट दी थी पानी के प्रोजेक्ट के लिए रावलपिंडी के इर्द-गिर्द वहाँ पे अभी भी अफगान जो महाजरीन है वो रहते हैं तो उनके प्रोजेक्ट पानी के प्रोजेक्ट से उस सिलसिले में हमने वो ग्रांट ली थी। इसके अलावा हम लोग कुछ और इदारे हैं इंटरनेशनल उनसे भी हमें कुछ ग्रांट्स मिल रही हैं लेकिन अभी भी तकरीबन आप कह सकते हैं कि 95% जो हमारे पास डोनेशन है वो आम अमरीकी देते हैं लेकिन 5% में हमें अभी ग्रांट्स हैं। लेकिन ऑन द लॉन्ग रन इस चीज को चलाने के लिए ग्रांट्स की बहुत सारी जरूरत होगी हमें। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हम हमारे 14 डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट हैं जिसमें पानी एक प्रोजेक्ट है और हर एक के लिए हम लोगों ने एक मॉडल तैयार किया है ताकि हम लोग उसको ग्रांट एजेंसी के सामने फिर पेश कर सकें।
अच्छा,
ये हासिल
तो इसके जो बिल्कुल ये और पानी के प्लांट की तो हमने बात की तो अगर हम आपसे कहें कि मुख्तसरन और दूसरे प्रोजेक्ट्स पर भी रोशनी डाल दीजिए तो ये हमारे सुनने वालों के लिए फायदा मंद होगा।
इसमें हम लोगों ने इस तरह किया कि एक इंसान जो है उसको इस दुनिया में रहने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है तो पहली बेसिक चीज तो पानी है
تو وہ پانی کی فراہمی ہوگی. ایک انسان کو ضرورت ہے کھانے کی, تو کھانے کے سلسلے میں ہم نے یہ سوچا کہ اگر آپ کسی کو چاول کی ایک بوری دے دیں تو ایک دفعہ تو چل جائے گی لیکن لانگ رن کس طرح چلے گی. تو ہم نے اس میں ہم نے اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کو ہم نے انٹروڈیوس کیا کہ لوگوں کو ایسے ہنر سکھایا جائے کہ وہ اس کو استعمال کر سکیں, اور جب ان کو ہم ٹرین کر دیں تو ہم ان کو کوئی آلہ دے دیں, ایک ایسا آلہ دیں جس کو وہ استعمال کر سکیں. مثلا خواتین کو ہم سلائی مشین دے دیں, جو لوگ کسان ہیں ان کو ہم بیج دیں, مطلب بیج ایسا دیں جو کہ ان کو وہ لگا کے اپنی فصل وہ تیار کر سکیں. اسی طرح ہم نے انٹرسٹ فری مائکرو فائنینس کا پروگرام تیار کیا جو کہ جو اسمال بزنسز ہیں, ایک بالکل اسمال اسٹور ہے کسی کا, اس کو وہ چلانے کے لیے ایک انٹرسٹ فری مائکرو فائنینس سسٹم ہم نے انٹروڈیوس کیا. 15,000 سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں, بلکہ آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ اس سال گورنمنٹ آف پاکستان نے ہمیں $1.2 million کی ایک گرانٹ دی, جو انہیں ہمارا ماڈل بہت زیادہ پسند آیا, یہ جو ہمارا انٹرسٹ فری مائکرو فائنینس کا. اور اس سلسلے میں ہم لوگ ایسے علاقوں میں کام کر رہے ہیں جہاں پہ گورنمنٹ پہنچ نہیں سکتی, مطلب چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں, چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں, پہاڑوں پہ لوگ رہ رہے ہیں, ایسے ایسے علاقوں میں ہم لوگ کوشش پہنچ رہے ہیں انٹرسٹ فری مائکرو فائنینس سے. اس کے علاوہ ہمارے کچھ اسکولز ہیں ایسے, کیونکہ اسکول سسٹم کو چلانا ایک بہت مشکل کام ہے, لیکن اگر ایک آلریڈی اسکول سسٹم چل رہا ہے اس کو اور ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ بہت اچھا کام کر رہا ہے, تو ہم اسکول سسٹم کو سپورٹ کرتے ہیں تھرو ڈونیشن. تو یہ ایک ہمارا ایجوکیشن سپورٹ پروگرام ہے. اس کے علاوہ ہم لوگ, ایک انسان ہے اس کو ہیلتھ کیئر کی ضرورت ہے, تو ہیلتھ کیئر کے سسٹم میں ہم نے سوچا کہ ہم بہت بڑا ایک ہسپتال بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس کو چلائیں گے کس طرح. تو ہم نے سوچا کہ ایک بیسک چیز ہے مدر اینڈ چائلڈ, کہ ایک پاکستان میں کئی بچوں کی پیدا ہوتے ہی ان کی اموات ہو جاتی ہیں, خواتین جو ہیں وہ اس کے دوران جو پریگنسی کے دوران یا بچے کی ڈلیوری کے دوران ان کی ڈیتھس ہو جاتی ہیں, تو ان کو کس طرح پریوینٹ کر سکتے ہیں, ان کے بچوں کی کس طرح نسل نما کر سکتے ہیں, تو اس کے لیے ہم نے مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیئر یونٹس بنائے ہیں پاکستان میں بہت سے. تو اس طرح کے, اس طرح اگر کسی کا گھر تباہ ہو گیا سیلاب میں, تو اس کے لیے ہمارے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے. اس کے علاوہ کئی لوگ جو ہیں امریکہ میں وہ کیش ڈونیشن دیتے ہیں, لیکن کئی لوگ ایسا چاہتے ہیں کہ وہ کچھ چیزیں دے دیتے ہیں ہمیں ان کائنڈ, مطلب کسی نے کپڑا دے دیا, کسی نے کھانے کا سامان دے دیا. تو ہمارا پورا سسٹم ہے ان کائنڈ گفٹس کا, جس میں سب سے بڑا پروگرام جو ہے اس میں وہ ہے میڈیکل سپلائز کا, جس میں ہم لوگ ایشن کراچی سسٹر کے ساتھ مل کے امید ہے کہ ہم لوگ کراچی کے کچھ ہسپتالوں کو امریکہ کے میڈیکل سپلائز یہاں سے وہاں بھی بھجوانے کی کوشش کریں گے. اور ہم لوگ ہر سال تقریباً 12 سے لے کے کوئی 30 کنٹینرز بھیجتے ہیں, جس میں ایسا سامان بھیجتے ہیں جو کہ پاکستان کے ہسپتالوں کے لیے نادار ہوتا ہے, مطلب وہ وہاں پہ مہیا نہیں ہوتا, لیکن امریکہ سے ہم ان کو ہسپتالوں سے لے کے ان تک پہنچاتے ہیں. تو یہ پورا میڈیکل کا سسٹم بھی ہمارا. اس کے علاوہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے ہمارا منشیرا میں, بہت سے لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, بم کے دھماکے ہوتے ہیں, دہشت گردی کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, تو کافی لوگ جو ہیں ان کے کسی کا بازو ضائع ہو جاتا ہے, کسی کی ٹانگ ضائع ہو جاتی ہے, تو ہم لوگ نے ایک کمپریہنسو فزیکل ریہیبلیٹیشن سینٹر بنایا ہے وہاں پہ, جہاں پہ آپ کو آرٹیفیشل لینس, اس طرح کی آرٹیفیشل آلات جو آپ کے جسم کے چیزیں, اس کے لیے پورا سسٹم ہے کمپریہنسو ریہیبلیٹیشن سسٹم, ایک پورا سینٹر ہے ہمارا. تو اس طرح بے شمار پروجیکٹ ہیں, اس طرح سیزنل پروجیکٹ ہیں, سردیاں آ جاتی ہیں, سردیوں میں لوگوں کو غذائی کی ضرورت ہوتی ہے, تو ہم لوگ ایک پورا ہمارے سیزنل ونٹر پیکج پروگرام ہے. اس کے علاوہ رمضان میں ہم لوگ فوڈ ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں, اس کے علاوہ ہم لوگ عید کے اوپر گفٹ پروگرام ہے.
بس یہ تو ایک بہت لمبی فہرست ہے, میرا خیال ہے کہ ہم اگر یہ اس پورے ایک گھنٹے میں ہم آپ کی جو سرگرمیاں ہیں اور آپ کی جو خدمات ہیں ہیلپنگ ہینڈ فار ریلیف اینڈ ڈیولپمنٹ کی, ان کا تذکرہ کریں تو یہ پروگرام تھوڑا پڑ جائے گا. بہت بہت آپ کا شکریہ اور بہت مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ اتنے بہت سارے کام, ایک ادارہ ہے اور ظاہر ہے کہ یہ چند لوگوں سے شروع ہوا تھا اور آج یہ اتنا بڑا ہو گیا اور آپ کے ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ اتنے سارے لوگوں نے ملا لیے ہیں, پاکستانی امریکیوں نے, جو اس ادارے کو کامیابی سے چلانے میں مدد کر رہے ہیں. لیکن فضل الرحمان صاحب, آپ یہ بتائیے کہ آپ کو پھر مسائل کیا پیش آتے ہیں جب آپ ان تمام پروگراموں کو, جب فنڈز بھی مل جاتے ہیں, آپ کے پاس سسٹم بھی موجود ہوتا ہے, تو اس کو چلاتے ہوئے کوئی مسائل آپ کو پیش آتے ہیں؟
جی, مسائل تو ظاہر ہے کہ اب جب پاکستان سے, آپ بھی پاکستان سے ہیں, دیکھتا مسائل جو ہے وہ یہاں پیش تو آتے ہیں. اگر بجلی کی بات کریں تو उसकी लोड शेडिंग भी इतनी होती है, या गैस की बात करें तो उसकी लोड शेडिंग अपनी जगह होती है, लेकिन मेरे ख्याल में हमें अपने प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करने में मुझे ये 10 साल हो गए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई ऐसा मेजर गवर्नमेंट की तरफ से या किसी अदारे की तरफ से कोई ऐसा इशू नहीं आया है। उसकी रीजन ये है कि ये अदारे गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशन हैं वो भी ये देखते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन फील्ड में कैसे काम कर रही है, तो वो इस तरह के जो इश्यूज हैं उनको जिसको कहते हैं कि रिपोर्टिंग और इंफॉर्मेशन की पाम पहुंचाने का जो है अगर मुसलसल काम रहे तो अदारों को वहां तक पहुंचने में कोई मसायल नहीं होते।
अच्छा। और अगर इस
ये जरूर है कि जिस तरह इन्होंने बताया है कि ज्यारत बहुत दूर एरिया है बिस्तान में लोरालाई है या इसी तरीके से चतराल और हवेली कश्मीर के अंदर एक ऐसी दूर दराज जगह है या थरपारकर है, तो ऐसी जगहों पे पहुंचना और इतना बड़ा नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में जो है वो लेकर चलना और इतने प्रोग्राम अभी 2-3 का उन्होंने जिक्र नहीं किया इसमें डिसेबिलिटी के हवाले से,
लेकिन अगर इस वक्त
बच्चों के हवाले से है तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह वहां तक पहुंच कर जो आपने डोनर की सेक्शन तक और अल्लाह की खुशनूदी के लिए जो कोशिश हो सकी हमने यहां कर रहे हैं।
बेहद शुक्रिया फजलुर रहमान साहब। अगर इस वक्त हमारे जो लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं दुनिया भर में वो चाहें कि आपसे राब्ता करें तो आप अपनी वेबसाइट का लिंक बता दीजिए ताकि अगर कोई पानी के प्रोजेक्ट में आपकी मदद करना चाहे या किसी भी प्रोजेक्ट में आपके साथ शामिल होना चाहे, हाथ से हाथ मिलाना चाहे, तो उनको आप तक पहुंचने में आसानी हो। वैसे हम आपके लिंक्स अपने फेसबुक पेजेस पर भी पोस्ट कर देंगे प्रोग्राम के बाद। जी बोलिए।
जी ये बड़ी आसान है HHRD.org .org
अच्छा।
ये सिंपल वेबसाइट है, वहाँ जाकर वो अपने इंफॉर्मेशन भी इन्फो पे जाकर हमें ईमेल भी भेज सकते हैं और हमारी एक्टिविटी।
बेहद शुक्रिया। और इसी तरह वो यूएस उसमें तमाम यूएसए के लिंक्स भी मिल जाएंगे आपकी वेबसाइट पर। और हम हमारे साथ रब्ता हो गया उमेर का जो उस वाटर प्लांट से मुस्तफीद हो रहे हैं जो आप लोगों ने भी हाल ही में लगाया। अस्सलाम वालेकुम उमेर साहब उमेर साहब अस्सलाम वालेकुम।
जी।
हाँ जल्दी से बताइए कि आपको क्या फायदा हुआ इस प्लांट का जो अभी अभी लगा है आपके इलाके में।
जी मैं वैसे तो इस प्रोग्राम का मशहूर हूँ कि मेरी आवाज़ हेल्पिंग हैंड तक पहुँचाई, तो उनका भी बहुत मशहूर हूँ कि हमारे
जल्दी से आप बताइए कि आपको फायदा क्या हुआ आपको।
हमारी कम्युनिटी को आरओ प्लांट के पानी से वाटर बोर्न डिजीजेस जो पानी में आम पानी में होते हैं उनसे काफी हद तक जैसे बीमारी टाइफाइड डायरिया हेपेटाइटिस जैसे बीमारियों से बच गए हैं।
अच्छा तो अब आपको साफ पानी मिल रहा है, तो उसको लेने में आपको कोई दुश्वारी तो नहीं पेश आती, मुश्किल तो नहीं होती जब आप पानी लेने जाते हैं साफ?
जी रश तो होती है क्योंकि एक पंप लगा हुआ है वहाँ पर, अगर यहाँ पर थोड़े और यहाँ पर लग जाए।
अच्छा चलिए भाई अब एक पंप काफी नहीं है,
अगर
अब दूसरे पंप भी लगाए। नाजिया हमारे साथ मौजूद है, नाजिया से हमारा रब्ता मुनक़ता हो गया, तो बेहद शुक्रिया उमेर साहब, बड़ी देर से आपसे रब्ता हो पाया तो हम शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने बताया कि आपको इस प्लांट से बहुत फ़ायदा हो रहा है। और अब आज के प्रोग्राम को समेटने का वक्त हो रहा है, हम अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए आज का प्रोग्राम समेटते हैं और अपने सुनने वालों को बता दें कि वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन के प्रोग्राम हरदम रवायत ज़िंदगी में हमारे आज के मेहमान थे ह्यूस्टन कराची सिस्टर सिटी एसोसिएशन के सदर मोहम्मद सईद शेख जो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स यूएसए के सदर भी रह चुके हैं, और हमारे मेहमान हैं जो पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स यूएसए के सदर भी रह चुके हैं। हमारे मेहमान थे हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट यूएसए के डायरेक्टर प्रोग्राम इलियास हसन, और हमारे मेहमान थे कराची ह्यूस्टन सिस्टर सिटी एसोसिएशन के पैटर्न इन चीफ मजीद अजीज जो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर भी रह चुके हैं, और हमारे मेहमान थे हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट पाकिस्तान के कंट्री डायरेक्टर फजलुर रहमान। और हमने बड़ी कोशिश की कि उस प्रोजेक्ट के उस वाटर प्लांट के प्रोजेक्ट के बेनिफिशरीज से भी हमारी बात हो पाए, लेकिन वो सिर्फ उमेर साहब से बात हुई, उनका भी शुक्रिया अदा करते हुए आज का प्रोग्राम समेटते हैं। हमारी प्रोड्यूसर थी गुलरुख और हमारे इंजीनियर थी त्यानमन। यास्मीन जमील को आज का प्रोग्राम समेटने की इजाज़त दीजिए और कोशिश कीजिएगा कि हमारे हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के साथ तआवुन करें, और इस तआवुन के लिए आप रब्ता कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेजेस पर इनके जो काम करने वाले लोग हैं उनसे। बेहद शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।